आप सब हरि कथा प्रेमियों का स्वागत है। चौटन निवासियों का आज के सायंकाल के सत्संग में भगवद गीता के ऊपर चर्चा चल रही है, और विशेष रूप से इन दो दिन में और आज तीसरा दिन है भगवद गीता के नवें अध्याय के ऊपर चर्चा चल रही है। भगवद गीता का नवें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्यम योग। सब विद्याओं का राजा और शब्द गुप्त में गुप्त ज्ञान जो है उसके विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह के सत्र में विशेष रूप से इस अध्याय के पहले श्लोक के दो शब्दों के ऊपर चर्चा की गई थी, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। मैं भगवान कहते हैं वक्ष्यामि, तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं अर्जुन, तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। क्या बता रहे हो भगवान? पहले क्यों बता रहे हो? बोला अनुसूयवे। ये अनुसूयवे एक बहुत संस्कृत का सुंदर शब्द है जिसको समझना चाहिए। अनुसूयवे, एक अनुसूया नाम की ऋषि पत्नी हुई है, अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था अनुसूया। सूय शब्द, पहले सूय शब्द का मतलब ईर्ष्या करना, किसी में दोष देखना। सूय का मतलब गुण कितने भी हो वो नहीं दिखाई दे और दोष दिखे, उसको बोलते हैं सूय। और अनुसूय का मतलब जो दोष नहीं देखे, गुण ही देखे, उसको बोलते हैं अनुसूय। अर्जुन तुम अनुसूय हो, तुम दोष दृष्टि नहीं रखते हो, इसलिए तुम्हारे को मैं ज्ञान विज्ञान सहित ये शिक्षा देता हूं, जिसको जानने के बाद मोक्ष से अशुभात, कोई शुभा नहीं है, कोई शक नहीं है, अब कोई शंका नहीं रहेगी और तुम मुक्त हो जाओगे, बंधन से छूट जाओगे, क्योंकि तुम अनसूय हो। तो जो अनसूय व्यक्ति होता है, अनसूय माता के घर में भगवान राम स्वयं चल के आए थे, बुलाने की जरूरत नहीं है। एक बार महाराज अपने कमरे में बैठे थे बंबई में, कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो बाहर से जब मिलने के लिए आए तो कोई सिगरेट पीता हुआ आ रहा था, बाहर सिगरेट को बुझाया और कहा कि महाराज से मिलना है। महाराज से मिलने गया, आधा घंटा महाराज से बात की उन लोगों ने। जब वापस जा रहे थे तो जो बाहर सेवक बैठा था गया महाराज को, बोला ये लोग आपका टाइम खराब करते हैं, जो को बाहर सिगरेट पीते हुए आ रहे थे, व्यसन है फिर भी आप संतों का समय खराब कर रहे हैं। महाराज ने उस सेवक को देखा और पूछा कि बंबई में कितने लोग रहते हैं? बोला 1 करोड़ लोग रहते हैं। बोला उनमें से संतों के दर्शन करने के लिए अपने मंदिर में कितने लोग आते हैं? बोला महाराज सुबह से शाम तक तो कोई आपसे मिलने 15-20 लोग आते हैं, मंदिर में हजारों लोग आते होंगे। बोला 1 करोड़ में से 10-15 लोग साधु संत का दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ पूछने के लिए, जिज्ञासा के लिए आते हैं, तुमको उनके अंदर ये अच्छाई नहीं दिखाई दी, तुमको उसके अंदर बुराई सिगरेट ही दिखाई दी क्या? 1 करोड़ की संख्या में से 10 आदमी अगर आ रहे हैं अच्छी जगह पे अच्छे व्यक्ति से मिलने, तो उसकी अच्छाई क्यों तुमको दिखाई नहीं दी, तुमको क्यों बुराई ही केवल दिखाई क्यों दी? और फिर महाराज ने एक सिद्धांत समझाया कि इस जगत में अगर जीना है तो मधुमक्खी की तरह जियो। मधुमक्खी नीम जैसे कड़वे वृक्ष के ऊपर जाएगी तो उसके अंदर से मिठास लाएगी, करेले के ऊपर बैठेगी तो उस पत्ते के अंदर से भी मधु निकालेगी। तो जो कैसी भी परिस्थिति में अच्छाई देख सके उसको अनुसूय कहते हैं, और जो अच्छा कितना भी हो उसके अंदर बुराई ढूंढ के निकाले उसको सूय कहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ये अनुसूय मार्ग है, इसके अंदर किसी में बुराई नहीं देखनी है, सब में अगर ढूंढोगे तो अच्छाई जरूर मिलेगी। ऐसा संसार में अंदर एक व्यक्ति भी नहीं है जिसमें सिर्फ बुराई हो, और ऐसा एक भी नहीं है जिसमें सब अच्छाई हो, इसलिए अच्छाई और बुराई सब में है, लेकिन सज्जन पुरुष सब में अच्छाई देखता है और दुर्जन सब में बुराई देखता है, उसको अच्छाई दिखती नहीं। एक प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है, महाराज परीक्षित का राज है। महाराज परीक्षित दिग्विजयी, दिग्विजय कहते हैं, दिग कहते हैं दिशाओं को। ऐसे तो अंग्रेजी भाषा में 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन भारतीय साहित्य और भारतीय सिद्धांत में 10 दिशाएं हैं, मतलब 10 दिशाएं बोलते हैं। 4 दिशाएं हुई, 4 कोने हुए और एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं, और 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल हैं। उनके दिग्पाल है, मतलब दिगाओं के, उन दिशाओं के रक्षक हैं। तो दिग्विजयी उसको कहते थे राजा, जो सारी दिशाओं में जाता था और जो राजा थे वो हरे कृष्णा, जो राजा होते थे उस राजा को अपना चक्रवर्ती मानते थे और जो भी उसको देना था उसी के अधीन अपने आप को मानते थे। तो महाराज जब परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले तो जहां जहां जाते थे लोग उनको मिलते थे, कहते थे आप तो पांडवों के पौत्र हो, अरे आपके पितामह अर्जुन के संग में भगवान श्री कृष्ण की इतनी मैत्री थी, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर उनको गाथाएं बताए थे, महाराज बड़े प्रसन्न होते थे। तो दिग्विजय करते करते एक जगह से महाराज गुजरते हैं तो वहां एक बहुत एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, जिस दृश्य को देख के महाराज को बहुत क्रोध आ गया कि मेरे राज्य के अंदर चारों ओर चारों दिशा में हर जगह जहां मैं गया सभी जगह ठीक ठाक काम चल रहा था धर्म के अनुसार, और यहां क्या देखते हैं सामने कि एक बैल है और बैल जो है वो एक टांग के ऊपर खड़ा है, तीन टांगें टूटी हुई है और गाय एक है बहुत दुबली, आंखों से पानी बह रहा है और उनके पीछे एक व्यक्ति राजा जैसा, वेशभूषा तो राजा जैसी है लेकिन क्रूर दंड में हाथ में लेके उस बैल को और गाय को मार रहा है। महाराज परीक्षित को ये देखकर बड़ो क्रोध आया, कोई राजा है जो क्षत्रिय राजा राज करता है वो कभी भी गौ ब्राह्मण की हत्या नहीं होने देता है, बच्चे की स्त्री की बूढ़े की रक्षा करना उसका धर्म होता है, जो स्त्री की बूढ़े की बच्चे की गौ की ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सकता है वो संस्कृति तबाही की ओर जा रहा है, उसका नाश होना निश्चित है, ये शास्त्र का प्रमाण है। तो महाराज परीक्षित कहते मेरे राज के अंदर कोई गौ के ऊपर और गौ के ऊपर और बैल के ऊपर वो भी दुबले पतले चल नहीं सकते एक पांव के उसको मार रहा है। महाराज परीक्षित तलवार निकाल के और उसको कहा कि दुष्ट तुम इतना निर्दयी हो के गौ के गौ की हत्या कर रहे हो। उसने महाराज परीक्षित को देखा हाथ जोड़ के, महाराज मैं आपकी शरणागत हूं मेरे को प्राण दान दीजिए। महाराज परीक्षित क्षत्रिय का दूसरा धर्म होता है कोई शरणागत होता है तो उसको प्राण दान दे दिया। तब उससे पूछा है कौन, गाय से पूछा आप कौन, बेल आप कौन। तब महाराज को उत्तर मिलता है, बेल कहता है महाराज मैं धर्म हूं। बेल धर्म का प्रतीक है, बलद और वो भी सफेद ध्वल वो धर्म का प्रतीक है कि मैं धर्म हूं और धर्म और ये जो मेरे को डंडा मार रहा है ये कलयुग है, तीन पांव मेरे टूट चुके हैं, एक पांव सिर्फ कलयुग है जिसमें कलयुग में एक पांव के ऊपर धर्म खड़ा है और गाय पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ऐसे शासक है जो राजा का वेशभूषा है लेकिन हाय बहुत नीच और लोगों को कष्ट देके दुखी धर्म को और धर्म के ऊपर चलने वाले को पृथ्वी के ऊपर रहने वाले को सता रहे। तो गाय ने भी और बैल ने भी कहा जो कुछ हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, किसी के ऊपर दोष नहीं दिया। तो महाराज ने पहचान लिया ये धर्म है और कलयुग ने कहा महाराज मुझे प्राण दान दीजिए, प्राण दान दे दिया। तब कलयुग ने कहा मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए महाराज। तो महाराज परीक्षित ने कहा धर्म के चार स्तंभ हैं, जिसके ऊपर धर्म खड़ा है वो चार स्तंभ है, सत्य दया तपस्या और पवित्रता, चार खंभों के ऊपर धर्म खड़ा है, सत्य दया तपस्या और पवित्रता। और महाराज परीक्षित ने कहा कलयुग को तुम वहां जाके रहो जहां पशु हत्या होती है, पशु की हत्या होती है और मरे हुए पशु को मारने के बाद जहां अभक्ष्य भोजन खाया जाता है उस स्थान के ऊपर जाके तुम रहो, इसका मतलब कसाई खाने में जाकर रहो जहां पशुओं को मारा जाता है, जहां पशु की हत्या होती है वहां दया रूपी धर्म का स्तंभ टूट के नीचे गिरता है, निर्दयता होगी तभी किसी जीव की हत्या होती है, अहंसा किसी को नहीं मारना और हिंसा जहां हिंसा होती है मारा जाता है और मारा भी किस लिए जाता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग के लिए, जहां पशु की हत्या होती है वहां दया नाम का जो भगवान धर्म का स्तंभ है वो गिर जाता है। एक स्थान दिया कि जाओ जहां पशु हत्या होती है वहां रहो, सूना जहां मारा जाता है। कलयुग बोला महाराज ऐसी तो कोई जगह है नहीं, मैं कहां रहूं आपके और कोई स्थान दीजिए। तब का सुरापान जहां नशा होता है शराब होता है वहां जाके रहो। तो दूसरा धर्म का स्तंभ है वो है तपस्या। जहां नशा आ गया, जहां व्यसन आ गया, शराब आदि नशा आ गया, वहां तपस्या नहीं हो पाएगी। तपस्या करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और नशे वाले आदमी को तो आधे घंटे के बाद उस नशा इतना सताएगा कि वो बैठ नहीं पाएगा। बड़े नशे को छोड़ो, छोटे नशे की आदत जिसको होती है वो भी उस एक नशे, सुबह चाय नहीं मिले तो सर में दर्द होता है, आदमी उठ के कोई काम नहीं करता। ये छोटे से छोटा एक व्यसन ये भी अंग्रेज ने हमारे सर के ऊपर ऐसे थोपा, ऊपर से चाय की पूरियां नीचे गिराई और रस्ते में जगह जगह पे चाय का स्टॉल लगाया, आइए आइए चाय पीजिए, मुफ्त की चाय पीजिए। और मुफ्त की पीते पीते हमारे घर के अंदर देगड़े के अंदर आके बैठ गई है। अब घर के अंदर रसोई के खर्चे से ज्यादा चाय का खर्चा। ये सच है कि झूठ है? एक महात्मा समाज सुधारक होता, वो एक गीत गाता था, कहता ओम जय चाय की प्याली। अब पहले वो भगवान का नाम लिए तो सुबह आरती होती थी तो जहां भी घंटी बजती थी कुछ खड़खड़ होता था। अब तो कोप और प्लेट सुबह सुबह गजब घर में पहले बजता है, ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली। सुस्त जो है जो उठ नहीं सकते बेचारे, पड़े हुए हैं ऐसे आलस में, एक कप पियेंगे हाँ हाँ अब ठीक है अब उठ गए हैं, तो सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली ओम जय चाय की प्याली। हमको कहते हैं आप क्यों नहीं पीते? अरे भाई सुस्त नहीं है हम, अरे सुस्त है तब पिए ना, हम तो पहले से भगवान के नाम के आनंद में मस्त हैं, तो काय के लिए चाय पी के फिर अपने आप को उठाने का प्रयास करें। ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली ओम जय चाय की। और फिर क्या कहे, बिस्तर से उठते ही चाय जरूर मिले, बिस्तर से उठते ही चाय जरूर मिले, फिर दंतन फिर मंजन, बिन दंतन बिन मंजन है मुंह में डाली ओम जय चाय की प्याली, बिन दंतन बिन मंजन है मुंह में डाली। दंतन नहीं मंजन नहीं, पहले चाय पियेंगे उसका नाम क्या है, बेड टी। बेड का मतलब खराब है, खराब। और उसमें डालते हैं उसका नाम पता है क्या है, पत्ती। क्या कहते हैं उसको, पत्ती। परमेश्वर जिसको मानते हैं वो उठा के रोज उसमें डाल के उबाल के बाहर फेंक देते हैं। पति का देवाला रोज निकलता है। हरे कृष्णा, पति का रोज देवाला निकलता है ना, उबालते हैं पहले अच्छी तरह से फ्रेंक। किसने बोला इसका नाम अंग्रेजी में हस्बैंड क्यों है, बोला जिसका बैंड बजाओ फिर भी हंसता रहे उसको हस्बैंड बोलते हैं। हरे कृष्णा। अतिथि जो आए चाय जरूर मिले, फिर भोजन की थाली ओम जय चाय की प्याली। मेहमान कोई आ जाए उसको लाडू लड्डू खिलाओ, सीरा पूरी खिलाओ, लेकिन चाय नहीं पिलाई तो बाहर जाके बोलेगा चाय भी नहीं पिलाई। चाय जरूर मिले हा? पहले। और फिर बहुत सुंदर बात कही है कवि ने कि दूध की नदियां बहती थी इस देश में। इस देश में दूध कभी बिकता नहीं था, दूध और पूत लोग पहले पूछते थे और दूध रतन था। अगर 10-50 साल पुराने जमाने में जाओ तो दूध बिकता नहीं था। अड़ोसी पड़ोस छाछ तो लोग मुफ्त में ले जाते थे घर से, 10-20-50 लोग छाछ ले जाते थे पड़ोस के। मक्खन किसी के घर में बच्चा होता तो देख के आते थे कि एक दुक्का देख के आओ उसके घर में बच्चा है, पैसा नहीं ले, दूध का पैसा बिकता नहीं था। इस देश में दूध की नदियां बहती थी, दूध में पड़ गई पत्ती काली ओम जय चाय की प्याली। ये काली पत्ती दूध में पड़ी उसका रंग बदल गया। काली भैंस सफेद दूध देती है लेकिन उस सफेद दूध में काली पत्ती उसको काला कर देती। तो दूध खत्म हो गया चाय के कारण, दूध पीने को नहीं मिलता है बच्चों को। सारे बच्चे दुबले पतले गांव में देखते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्टारवेशन, उनमें बच्चों का भोजन है क्या, दूध है। माँ तो बच्चों को आजकल दूध पिलाती है, दूसरी बीमारी है। गांव में तो अभी तक माता दूध पिलाती होगी, बड़े शहरों में स्त्री कहती है नहीं नहीं बच्चे को हम दूध नहीं पिलाएंगे, क्यों, वो हमारी सुंदरता खराब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बीमारी है पाश्चात्य देशों में और विशेष बड़े नगरों में, बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। फिर पता है क्या पिलाते हैं, बच्चे को माँ अगर स्तन नहीं पान कराएगी तो क्या पिलाएगी, बच्चा जब माँ का स्तन पीता है ना, तो बच्चा जब माँ का स्तन पीता है तो बच्चा माँ के मुंह को देखता है, माँ बच्चे को देखती है, और बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। उस दिन माँ से पहचान होती है। हजार स्त्रियों के बीच में छोटा बच्चा अपनी माँ को जाके पकड़ेगा। वो संबंध कब स्थापित होता है? जब दूध ऐसे बैठ के पीता है, माँ के आंचल में बैठ के ऐसे दूध पीता है जब, तब उसका संबंध स्थापित होता है। आजकल कैसे दूध पिलाते हैं बच्चों को? बोतल में। किसमें? हाँ, बच्चा छोटा, उसको बोतल दे दी, वो आंखें से बोतल को देखेगा, तो वो संबंध किससे स्थापित होगा? बोतल से। हाँ, संबंध हो गया बोतल से स्थापित। इतना बड़ा हो गया 8-10 साल को, माँ 10 रुपया दे, क्यों करेगा? बोतल पिएगा, फिर जाएगा कोको कोला की बोतल लाएगा पिए। अब संबंध स्थापित बोतल से हुआ तो अब क्या करेगा? और 20-22 साल का हो गया, बोला दे 30 रुपया, क्या करेगा? लेगा बोतल, वो दूसरी वाली बोतल पिएगा, तो वो बोतल दूसरी शुरू हो गई। माँ ने बोतल दिखाई तो 12 साल में एक बोतल, और 22 साल में दूसरी बोतल, और 45 साल हो गया तो अस्पताल में दाखिल हो गया, फिर डॉक्टर वाली बोतल, और उस बोतल को देखते देखते राम नाम सत होगा। तो दिखाया ही बोतल, तो कहां से उसका काम ठीक होगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूध माँ पिलाती नहीं है और दूध बाहर मिलता नहीं है, क्योंकि चाय में सब चला गया। दूध की नदियां बहती थी इस देश में, दूध में पड़ गई पत्ती काली, ओम जय चाय की प्याली। और फिर बहुत अच्छा कवि कहता है अंत में, साधु हो या सन्यासी सबको ये भाती। महात्मा साधु होंगे, कहते हमारे को दूध पत्ती चाहिए, आधा पानी मत डालना, और महाराज की चाय जा रही है, स्पेशल चाय है। साधु हो सन्यासी सबको ये भाती, जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली, ओम जय चाय की प्याली, जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली। तो ऐसा व्यसन जिसके बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं, नहीं मिलेगी तो काम नहीं होगा, तो तपस्या चली जाएगी। ये तो तपस्या, मानव के लिए तपस्या सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव अपने 100 बेटों को, उसमें से बड़ा भारत है जिसके नाम से ये भारत वर्ष है, उसका तपो दिव्यम, अरे दिव्य तप करो बेटा। संसार के अंदर बाकी माता पिता घर बार भर ये सब हर जन्म में हर जूनी में मिलते हैं, लेकिन दिव्य तपस्या केवल मानव जन्म में की। काय के लिए दिव्य तपस्या करो? अलौकिक सुख की प्राप्ति तपस्या से होती है, तपस्या सुख प्राप्त कराती है। तो तपस्या कब भंग होती है? जब व्यसन और नशे का आदि होता है। तो कलयुग का कहां तुम जाके, वहां रहो जहां व्यसन और नशा होता है। महाराज आपके तो देश में ऐसे भी व्यक्ति नहीं है, कहां जाए? तब बोला तीसरा स्थान आपको देता है, जहां जुआ होते हैं वहां जाकर रहो। जुआ करने वाला सत्य नहीं बोलेगा, सत्य जो धर्म का स्तंभ है उसका नाश होता है जब व्यक्ति जुआ करता है। पहले तो जुआ होती थी, अब तो वो जुआ इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, सट्टे के नाम में बड़े बड़े अच्छे खास आदमी सट्टा करके जुआ का कारोबार कर रहे, अच्छे भले आदमी जुआ का कारोबार कर, और जुआ वाला आदमी सत्य नहीं बोलेगा। भाई भी होगा, कभी नहीं बताएगा क्या हुआ कल, नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं तो याद नहीं, पता नहीं क्या कुछ कहा था मैं भूल के, सच नहीं बोलेगा। तो चौथा स्थान दे दिया, व्यभिचार जहां होता है, पर स्त्री पर पुरुष का जहां संबंध होता है, वहां पवित्रता नहीं रहती। पवित्रता का स्तंभ धर्म का नाश होता है व्यभिचार से। चार स्थान कलयुग को दिए, कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ, महाराज से पांचवा स्थान मांगा। महाराज ने कहा जाओ स्वर्ण में निवास करो। स्वर्ण में निवास करो का अर्थ है कि जब आदमी के पास धन होगा, स्वर्ण का मतलब धन। एक 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 असुर का नाम हिरण्यकश्यप है, हिरण्य का मतलब सोना। जब सोना आ जाएगा तो आदमी असुरी भाव जल्दी आ जाएगा, जितना सोना ज्यादा उतना असुर बड़ा। लेकिन कलयुग को ये सब स्थान दिए, तब एक दिन ऋषियों ने पूछा कि महाराज कलयुग, महाराज परीक्षित को जब कलयुग हाथ आ गया था और उसको मार क्यों नहीं दिया? ये एक प्रश्न ऋषियों ने पूछा कि इतना बड़ा धर्मात्मा महाराज था और कलयुग जब उसके राज में आया और कलयुग के ऊपर उसने विजय प्राप्त की, कलयुग उसके चरणों में गिर गया, तो उसको मारा क्यों नहीं? तो हम विषय जिसके ऊपर बात कर रहे थे अनुसूय, दोष दृष्टि नहीं देखते हैं। तब भागवत में लिखा हुआ है कल महाराज परीक्षित साधु सुभा का राज ऋषि था, उसने कलयुग में भी अच्छाई को देखा, उसको बुराई नहीं दिखी, उसको अच्छाई दिखी। और कलयुग की अच्छाई भागवत में लिखा है बाकी युगों के अंदर मन से किया हुआ पाप उसका फल भोगना पड़ता था, लेकिन कल युग में मन से किए हुए पाप का कोई दंड नहीं है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक उसका दंड नहीं मिलेगा। और पुराने युगों में मन से किए हुए किसी भी पुण्य का फल नहीं मिलता था, जब करोगे तब फल मिलोगे। लेकिन कलयुग में मन से संकल्प किया कि मैं ये अच्छा काम करूंगा उसका भी फल मिलेगा। ये अच्छाई कलयुग की महाराज परीक्षित को नजर आई। इसको अनुसूय बोलते हैं कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसके अंदर भी अच्छाई जरूर होती है। उस अच्छाई को किसी को देखने को मिल जाए तो वो भाग्यशाली बुद्धिमान और वो धर्मात्मा व्यक्ति है जो अच्छाई को देख ले। साधारण व्यक्ति को सब में अच्छाई देखनी चाहिए। पिता को अधिकार है पुत्र के अंदर त्रुटि को देखने का, गुरु को अधिकार है शिष्य के अंदर त्रुटि को देखने का, पति को अधिकार है पत्नी के अंदर कमी को देखने का, राजा को अधिकार है प्रजा के अंदर कमी को देखने का। इनको अधिकार है कि तुम्हारी गलती है तुम मत करो, लेकिन साधारण व्यक्ति को अधिकार इस काम का नहीं। यही उनके प्राकृतिक गुरु है, आचार्य है, गुरु है, पढ़ाने वाला है। उसको अपने पिताजी को, पति को, राजा को अधिकार है, लेकिन सबको अधिकार नहीं है। और वो किसी में दोष देखते हैं तो द्वेष से नहीं देखते। पिता अगर बच्चे में दोष देखेगा कि तुम्हारे अंदर बेटा ये दोष है, तो द्वेष से नहीं देखेगा, उसकी बुराई करने के लिए, उसको गिराने के लिए नहीं देखेगा, उसको सुधारने के लिए देखेगा। उसके ऊपर क्रोध करेगा, वो क्रोध नहीं है, वो क्षोभ है, क्योंकि वो सुधारने के लिए। क्रोध का मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे को हानि पहुंचाना, लेकिन हानि नहीं पहुंचाते ये चारों। तो दूसरा बहुत बड़ा गुण महाराज परीक्षित को कलयुग के अंदर दिखाई दिया। और ये श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से कलयुग का अवगुण 12वें स्कंद भागवत में कलयुग के बहुत अवगुणों का वर्णन है। ऐसा अवगुण कलयुग का लिखा है कि जनपदा दस्यु। जनपदा मतलब ये जो जिला होता है वो दस्यु, दस्यु का मतलब उधर सिर्फ डाकू बैठे होंगे, और ऐसे चोर होंगे जो व्यक्ति वहां रहेंगे नहीं, और इतने टैक्स बढ़ जाएंगे कि लोग गांव छोड़ के शहर छोड़ के जंगल में भाग जाएंगे। अभी कभी हवाई जहाज का टिकट लेते हैं ना, तो टिकट आजकल जो ये जहाज निकले हैं ना, कुछ डेक्कन और कुछ एयरलाइन, उसमें एक रुपये का टिकट होता है। टिकट एक रुपया, टिकट एक रुपया लिखेंगे, टैक्स 500 रुपया, टैक्स 500 रुपया, टिकट एक रुपया, और तेल का खर्चा 1100 रुपया, सब मिला के 1601 रुपया दो। टिकट कितना है बोलेंगे 1 रुपया, टैक्स कितना है 500 रुपया, टिकट रुपया, टैक्स 500 रुपया, टैक्स बढ़ती जा रही है हर जगह। तो ये कलयुग के अनेक अवगुण बोले हैं, उनका वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित ने ये सारे अवगुण जब सुने तब महाराज परीक्षित बड़ा दुखी हो गए कि मेरे राज्य के अंदर मेरे को 7 दिन जीने के मिले, उसमें भी 12वां स्कंद सुन रहा हूं, आज 7वां दिन है, लेकिन मेरी प्रजा का क्या हाल होगा, कलयुग का इतना भरा भारी प्रभाव पड़ेगा। महाराज परीक्षित ने तो कलयुग को कहा कि तुम क्या समझते हो, भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर से चले गए, इसलिए तुमने आके हमारे नगर के अंदर और हमारे इस राज्य में आके आक्रमण किया है, और तुम्हें मालूम नहीं हम महाराज भगवान के भक्त हैं, हम आपको यहां रहने नहीं देंगे, क्या भगवान के चरणों के चिन्ह मिट गए हैं आप समझते हो। लेकिन परीक्षित महाराज दुखी होकर पूछते हैं महाराज सुखदेव गोस्वामी के, केन उपाय न कलीर जनारे, कलयुग की जनता का कौन सा उपाय है कि दुख से, दर्द से, पीड़ा से ये मुक्त हो जाए, महाराज बताइए। तो सुखदेव महाराज मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, कलेर दोषे निधे राजन। हे महाराज परीक्षित, कलयुग दोषों का सागर है। निधि कहते हैं सागर को, दोषों का समुद्र है कलयुग। तो कोई समुद्र को पार करेगा क्या, तैर के पार कर सकता है? कितना भी अच्छा तैरने वाला है, समुद्र तो पार नहीं होगा। नदी नाला पार करेगा, तालाब तालाब पार करेगा, समुद्र तो पार नहीं कर सकता है। तो कलयुग दोषों का सागर है, तो सागर को कैसे पार करेगा कोई। महाराज परीक्षित बहुत दुखी हो गए कि तो क्या, कैसे मेरी जनता का उद्धार होगा। महाराज परीक्षित के चेहरे के ऊपर चिंता को देखा, मुस्कुराते हुए सुखदेव महाराज कहते, अस्ति एको महागुण। इतने सारे दोष हैं फिर भी कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। महाराज क्या गुण है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैं उस गुण का, उस गुण को मैं ग्रहण करूंगा। अगर मैं ग्रहण करूंगा, राजा ग्रहण करेगा, तो प्रजा उसको बहुत आसानी से उस चीज को स्वीकार कर लेगी। भगवद गीता का शिक्षा है, यद यद आचरे तत् श्रेष्ठ तद तद एवत्रो जना। जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेगा साधारण व्यक्ति उसका अनुकरण करेगा। अगर पिता घर में सुबह उठ के भगवान का नाम लेता होगा, माता लेती होगी, तो बच्चा अपने आप जाके नमस्कार करेगा। एक हमारा मित्र पुराने जमाने का डॉक्टर था, हमारे साथ काम को मिला, उसका पिताजी भी उसके साथ आया था, उसका बेटा भी था, और हमको कहने लगा, मुझे कह रहा था डॉक्टर साहब, मुझे कहा डॉक्टर साहब देखिए ये मेरा बेटा मेरे को पाँव नहीं पड़ता है, मुझसे कह रहा है ऐसे। तो मैंने बोला तू तुम्हारे पिताजी के पाँव पड़ता है? तो बेचारा शर्माने लगा, और उसका पिताजी हंस रहा, बोला ये मेरे नहीं पड़ता है तो इसका बेटा इसके कैसे पड़ेगा। ये तो सीधी सी बात है ना, ये तो इस दुनिया में तो स्वयं जैसा आचरण करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, नहीं आचरण सिखाएंगे तो कहां से। एक स्त्री बहुत परेशान करती थी पति को कि तेरा बाप बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत परेशान करता है, छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ता है, कभी नमक ज्यादा बोलता है, कभी मिर्ची ज्यादा बोलता है, इससे हाथ निकालो, जाके हरिद्वार छोड़ के आओ, किसी आश्रम मंदिर में छोड़ो, हवाई जान छोड़ो। हाँ तो बहुत पत्नी ने परेशान किया, तो बेचारा क्या कहे, कलयुग का एक ये बहुत अवगुण विशेष रूप से लिखा हुआ है, साले की सलाह के ऊपर चलेगा, भाई को भुला देगा, है? जो आने वाला समय है, और स्त्री राज करेगी, है? जैसे चाहेगी वैसे घर को चलाएगी, चाहे भले आग लगा दे तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये जो स्त्री ने इतना झगड़ा किया तो पति बेचारा क्या करे, वो तो रोज उसको उबाल के बाहर जो फेंक देती थी, तो वो तो ऐसे ही हो गया, जो बगैर किसी काम का नहीं रह गया था। तो पिताजी को लेके गया बहुत दूर घने जंगल में, चलो पिताजी आपको तीर्थ करा के आता हूँ, हरिद्वार का दर्शन कराऊंगा, गंगा जी में स्नान कराऊंगा। जब घने जंगल में पहुंचा, बोला पिताजी आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ भोजन और जल की व्यवस्था करता हूँ। वो लड़का पीछे हटा तो पिताजी जोर से हंसे, लड़के का ये भाव हंस क्यों रहा है पिताजी, लौट के आया, बोला पिताजी आप हंस क्यों रहे इतने जोर से। बोला बेटा मेरे बाप को भी मैं यहां छोड़ के गया था, मैंने भी कहा था मैं पानी लेके आ जाऊंगा, ये उसको भी मैं, तुम नहीं आएगा मुझे मालूम है, लेकिन मैंने ऐसे किया था मुझे मालूम है, मैं यही छोड़ के गया। ये जब सुना तो बेटे ने बोला मेरा बेटा भी मेरे को यही छोड़ के जाएगा, ना बापा तू घर चल, तेरी कोठरी का मुंह दूसरे तरफ करेंगे, लेकिन तुमको छोड़ के यहां अभी मेरे को नहीं जाना है। तो ऐसा जो आचरण करेगा उसको, तो जो ऐसी शिक्षा खुद बच्चे कहां से सीखेंगे, हम नहीं आचरण करेंगे तो वहां कहां से सीखेंगे। एक बाप चाहता है बेटा तुम कभी सिगरेट मत पीना, और कहेगा तुम जाओ पैकेट तो ले आना बाजार से, अभी तो पैकेट तुम्हारा लेके आएगा तो वो पिएगा। अभी आज के जमाने में तो माचिस है, पुराने जमाने में माचिस नहीं होता था, पड़ोस पड़ोस से आग लाते थे तो सिगरेट देता था बच्चे को, जाओ आग से जला के आना, लेकिन भूख मत भरना, भूख नहीं भरेगा तो सिगरेट जलेगी कैसे, दो तीन तो मारेगा तब तो जलेगी ना, तो उसको कैसे तुम मना कर सकते हो, नहीं तुम बिल्कुल कैसे, तुम खुद छोड़ो तब वो छोड़ेगा ना, बुराई तुमको छोड़नी है। कहते हैं बहुत बड़े कोई राज ऋषि के पास कोई व्यक्ति अपने बेटे को लेकर गया कि महाराज कृपा करके इस बेटे को समझाओ, मई जून के महीने में गुड़ खाता है और गुड़ खाएगा तो आंखें इसकी दुखेंगी, बहुत खराब हो जाएगा इसका स्वस्थ। महाराज बोला कल लेकर आना। बेचारा बच्चे को वापस ले गया, दूसरे दिन फिर रिक्शे में लेके उधर गया, बोला महाराज इसको कुछ कहो ये छोड़ दे, बोला कल आना। तीन दिन तक उसको कुछ नहीं बोला, चौथे दिन जब आया तो बोला महाराज कुछ कहो, लड़का गुड़ रोज खाता है। महाराज ने देख के बोला बेटा गुड़ मत खाना कल से। चुप करके महाराज बैठ गया। उस बाप ने कहा महाराज इतना ही आपको कहा ना, मैंने बोला कुछ आप समझाएंगे, आपको इतना ही कहना था, पहले दिन कहते तीन दिन से हम रोज आते हैं 10 रुपया खर्च करके जाते हैं। महाराज ने कहा मैं खुद रोज गुड़ खाता था, तीन दिन मुझे छोड़ने को लगे, जब मैं छोड़ू तब इसको बोलो ना, मैं छोड़ूंगा तब मुझे अधिकार है इसको बोलने का, मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये कहां से छोड़ेगा। तो हम किसी को कहेंगे भगवान का नाम लेना तुम लोगे, मैं नहीं लूंगा तो आप कहां से लोगे, तो पहले मुझे लेना पड़ेगा तब आपको लेने की बात कहूंगा ना। तो आचरण करना पहले, तो महाराज परीक्षित कहते महाराज जल्दी बोलो कलयुग का क्या गुण है, मैं उसका आचरण करूंगा। राजा आचरण करेगा तो प्रजा अपने आप करेगी। विश्व में जो भी धर्मों का प्रचार हुआ है वो जिसने, किसी राजा ने जब उसका आचरण किया है तो वो धर्म बड़ा है। अशोका ने बुद्ध को स्वीकार किया तो बुद्धिज्म बढ़ा, महाराज रंजीत सिंह ने सिख को स्वीकार किया तो सिखिज्म बढ़ा। ऐसे जब पाश्चात्य देशों के अंदर ईसाई धर्म को रोमन एम्पायर ने स्वीकार किया तो ईसाई धर्म बढ़ा। ऐसे जब शासक जिस धर्म को स्वीकार करता है उसका प्रचार होता है। तो महाराज परिचय कहता है मैं कलयुग के लोगों के उद्धार का प्रचार करूंगा। महाराज बताओ एक क्या गुण है कलयुग में? अब गुण तो बहुत है, अस्ति एको महागुण, एक महागुण है, बोले जल्दी बताओ महाराज। तब महाराज सुखदेव के मुख से ये निकला है। सुखदेव महाराज कितना महान है, कितना महान है, भागवत लिखती है कि जब महाराज परीक्षित गंगा के तट के ऊपर जाके बैठे सुकताल में, ये समाचार जब विश्व में फैल गया तो विश्व के जितने ऋषि हैं, ब्रह्मांड में जो ऋषि अभी काम में लगे हुए हैं और जो काम से निवृत्त ब्रह्मलोक में रह रहे हैं, भाई रिटायर आदमी जो रहते हैं ना जाके, जब जरूरत पड़ती है तब फिर वापस आते हैं, वो सब अपने शिष्यों के साथ हजारों की संख्या में उस स्थान के ऊपर आए। ये विशेष रूप से भागवत में दो जगह पे आता है। पर जब भीष्म पितामह प्राण त्यागने का संकल्प करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात वहां जाते हैं, तब देखते हैं तो सारे ऋषि वहां बैठे हुए, वही ऋषि उनके नाम महाराज परीक्षित जब प्राण त्यागने के लिए 7 दिन के लिए गंगा के तट पे गए, सब ऋषि आके विराजमान हो गए। वहां व्यास बैठा हुआ है, नारद बैठा है, व्यास देव, नारद और वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, पराशर, ये अपने शिष्यों के साथ सब ऋषि आके बैठे हुए। तब दूर से दिगंबर वेश धारण किया हुआ, दिशाएं जिसका वेश है, कोई वस्त्र नहीं है, पीछे छोटे बच्चे, उसके ऊपर जैसे कोई नंगा आदमी जाता है तो जैसे बच्चे इकट्ठे होते हैं, ऐसे लड़कियां और बच्चे उसके पीछे आ रहे हैं, ऐसा नौजवान 16 वर्ष का, 20 वर्ष की आयु का आता हुआ लड़का देख के सब ऋषि खड़े हो गए। महाराज परीक्षित खड़ा हो गया, पीछे छोटे बच्चे आ रहे थे वो तो भाग गए, लेकिन उस व्यक्ति को देख के सब खड़े हो गए और सबने सम्मान के साथ प्रणाम किया। और जो आसन बना के रखा था व्यास आसन, जिसके ऊपर बैठ के महाराज परीक्षित को जो अंत समय में क्या करना चाहिए यह शिक्षा देना है, वहां उस सुखदेव महाराज को बिठाया। तो सुखदेव इतना महान था कि सारे संत समाज ने, सब ऋषियों ने उसका आदर सम्मान करके वो स्थान के ऊपर बिठाया। नीति शास्त्र कहती है ब्राह्मण वो बड़ा है जिसमें अनुभव का ज्ञान है, क्षत्रिय वो बड़ा है जिसमें बाहुबल है, वैश्य वो बड़ा है जिसके पास धन ज्यादा है, और आयु से केवल शूद्र बड़ा माना जाता है, मैं 80 साल का हूं इसलिए बड़ा हूं, नहीं, अनुभव से ब्राह्मण बड़ा। इतने सारे ऋषियों के अंदर साक्षात्कार किया हुआ सुखदेव महाराज को ऊपर बिठाया, तो ऐसा सुखदेव महाराज, उसके मुख से ये शब्द निकलते हैं, अस्ति एको महागुण, एक महागुण है कलयुग। महाराज बताइए महागुण क्या है? सुखदेव महाराज कहते हैं कीर्तन्य कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कीर्तन कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, ये साफ साफ शब्द का, कोई उसमें हेर फेर नहीं, वेग क्रम नहीं कहा, कि भगवान का कीर्तन भी नहीं कहा। भगवत गीता की बात करते हैं तो कृष्ण की बात करते हैं, उसमें एक एक पन्ने के ऊपर लिखा है श्री भगवान वाच, कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए महाराज सुखदेव ने स्पष्ट रूप से कौन, किसका कीर्तन, कीर्तन कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन। क्या फायदा होगा? मुक्त संग, संग का मतलब बंधन, जो हमको पकड़ के बैठे हुए हैं, मुक्त संग उससे मुक्त कर देगा। फिर क्या करेगा? मुक्त करके छोड़ देगा? बोलो नहीं, परम व्रजेता, परम पद तक आपको ले जाएगा, भगवान की गोद में जाके बिठाएगा। क्या करना है कलयुग में? एक ही काम करना है, कीर्तन कृष्णस्य। एक ही कलयुग का इतना प्रभाव भारी है कि उसको रोकना हमारे बस की बात नहीं, कलयुग को रोकना इंसान के बस की बात नहीं है। जैसे कभी उदाहरण देते हैं कि बरसात आने लग जाए बहुत तेजी से, तो कोई उसको रोक सकता है क्या? बरसात रोकने का किसी में हिम्मत है, किसी को अधिकार है बरसात को रोकने का? नहीं रोक सकता है। सरकार रोक सकती है? नहीं रोक सकती। राजा महाराजा बरसात को तो नहीं रोक सकता है ना, तो बरसात किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, ऐसे कलयुग के किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। लेकिन बरसात तो नहीं रुकेगी, लेकिन अपने कपड़े भीगने से बचाने का तो हमको आसान तरीका, 100 रुपये का छाता खरीदना है, वो तो खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? बरसात नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छाता तो खरीद सकते हैं ना, एक छाता 100 रुपये में, गरीब से गरीब आदमी के घर में भी एक छाता है कि नहीं है? छाता है ना बरसात में घर में, हाँ किरणियों है तो 100 रुपये का छाता खरीदना कोई मुश्किल तो नहीं है। तो कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति ये भगवत नाम का छाता तो खरीद सकता है ना। ये तो छोटा सा छाता खरीद ले भगवान के नाम का कीर्तन करना, कीर्तन कृष्णस्य, ये कीर्तन कृष्ण कीर्तन शुरू करेंगे तो एक अपना छाता अपने ऊपर ढकेगा तो कपड़ा तो भीगेगा नहीं। कलयुग तो अपना काम दिखाएगा लेकिन हम उसके प्रभाव से बच जाएंगे। बरसात तो गिरेगी लेकिन हमारे कपड़े नहीं भीगेंगे। तो ऐसे कलयुग में एक ही साधन है। तो हम बात यहां से कर रहे थे, महाराज परीक्षित अनुसूय था, अर्जुन अनुसूय था, उसने भगवान श्री कृष्ण में दोष दृष्टि नहीं देखी। तब भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान विज्ञान के साथ। ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान, लेकिन विज्ञान का मतलब अनुभव का ज्ञान। रस्वा भी हमने कहा था ज्ञान पराया बेटा होता है, ज्ञान किताब का है, पराया बेटा है, अनुभव अपना बेटा है। अनुभव करोगे तो साक्षात्कार आपको होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि विज्ञान आपने अनुभव किया किया, ये महत्वपूर्ण है। अनुभव होता है जरा अभ्यास करेंगे। एक बात विशेष रूप से कही जाती है कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। बहुत सरल साधन भगवत प्राप्ति का है, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा से नित्य उत्साह के साथ श्रवण करना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहिए? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भागवत लिखती है, शृण्वताम सुननी चाहिए स्वकथा, जो भगवान ने कथा कही है। क्या भगवान ने कहा है? भगवत गीता कही है, भगवान ने भागवत कही है, जो शास्त्र है वेद भगवान के मुख से निकले हैं। और परोष्य, भगवान वो वेदों को ब्रह्मा के हृदय में दिया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने वेद का ज्ञान दिया। तो भगवान ने जो कथा की है सुनो, क्या सुनना चाहिए? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये पुण्य है। तो क्या करना चाहिए? शृण्वताम सुनना चाहिए, शृण्वताम स्वकथा, अश्रृणताम श्रद्धया नित्यम। फिर दूसरा लाइन में लिखा है ग्रहणतश्च स्वचेष्टतम, जो सुनते हो उसको चेष्टा से ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप सब अभी सुन रहे हो, सुनने का काम कौन रहा है? कान सुनने का काम करता है, लेकिन कान से सुनने से समझ में नहीं आएगा। सुनना कान का काम है, समझना कान का काम नहीं है। जैसे कोई दूसरी भाषा कोई बोलेगा कान में तो आवाज जाएगा, लेकिन आपको कुछ समझ में थोड़ी आएगा। तो सुनना कान का काम है। तो श्रवण केवल सुनने को नहीं कहते, श्रवण कहता है सुनने के बाद समझना, और समझने के लिए दिमाग चाहिए। जो कहा जाता है उसको समझने का प्रयास करना उसको कहते हैं समझना, दिमाग का। समझ भी जाओ, ये समझ गए भागवत में भगवान ने कहा, महाराज परीक्षित को सुखदेव महाराज ने कहा कि कृष्ण भगवान का कीर्तन, समझ गए, सुन लिया और समझ भी गए। लेकिन तीसरा सुनने का जो फल है वो है अभ्यास करना। दिमाग से समझोगे लेकिन दिमाग से अभ्यास नहीं होगा, दिल से अभ्यास होगा। जब दिल मानेगा तब अभ्यास करोगे, जब अभ्यास करोगे तो अनुभव होगा, जानोगे तो ज्ञान होगा। दिमाग से ज्ञान होगा, दिल से करोगे तब अभ्यास होगा। कान सुनने के लिए है, दिमाग समझने के लिए है, दिल अभ्यास करने के लिए। और अभ्यास से अनुभव होगा, और अनुभव जब होगा तब हमारी सफलता होगी। सुनने केवल से काम नहीं होगा। सुनने वालों की चार प्रकार के लोग सुनने वाले होते हैं। एक मेला लगा था कहीं, मेले में सब लोग सामान बेचने आए थे, एक लोग कुछ मूर्तियां बना के बेच रहा था, और मूर्तियां चार एक जैसी बनी हुई थी, बड़ी सुंदर, सब एक जैसी शक्ल में, रंग में, ऐसी एक में रूप एक जैसी। पूछा कितने की है पहली मूर्ति? बोला मुफ्त। बोला दूसरी वाली 1 रुपये की, तीसरी 10 रुपये की, चौथी 100 रुपये की। तो हर एक बोले मुफ्त वाली दे दो। बोला ऐसी नहीं, लो तो चार साथ लो। रूहत जैसी मूर्तियां हैं, लेकिन एक मुफ्त की और 100 रुपये की, 1 रुपये की, 10 रुपये की, बड़ी समस्या हो गई। कोई आए कि मुफ्त वाली और 100 रुपये की कौन लेगा, मुफ्त में और 100 की एक जैसी। एक आदमी समझदार था, बोला 111 रुपये लो महाराज, चारों दे दो। ले लिया। बोला आखिर इसका दाम अलग अलग क्यों रखा है, बताओ जरा। पहली मूर्ति को उठाया, एक तार लिया उसके कान में डाला, नहीं गया। दूसरे कान में डाला, नहीं गया। बोला ये मुफ्त की मूर्ति है। बोला क्यों? बोला ये जाता है सत्संग में लेकिन सुनता कुछ नहीं है, दोनों कान बंद करके बैठा होता, कुछ अंदर जाने नहीं देता है कि बाहर ही पड़ा रहेगा। आया बैठा, सुना एक शब्द भी नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं जो सुनते नहीं है, बैठे होते हैं, उनका मन कहीं और होता है। मन कहीं और होता है तो सुनने से समझ में नहीं आएगा। आप कभी अनुभव करके देखते हैं, बोलते हुए आपकी अगर विचार कहीं और चला गया तो वो शब्द आपके अंदर जाएगा नहीं कान से, तो कान तो खुले हैं लेकिन अंदर नहीं जाएगा। बोला दूसरी मूर्ति महाराज, वायर डाली कान में, तार डाली, इधर से डाली, इधर से बाहर निकल आई। बोला ये रुपये वाली है, ये यहां से सुनते हैं यहां से निकाल देते हैं, यही छोड़ के जाएंगे। एक एक काका था, दुकान चलाता था, सत्संग में रोज जाता था। काका बड़ा हो गया, काका का बेटा भी बड़ा हो गया। अब बेटा दुकान के बैठने के लायक हो गया, दुकान पे बेटा बैठा, काका बाबा जो सत्संग में बैठा हुआ था, कोई चीज का किसी ने भाव पूछा, भाव पूछा तो भाव मालूम नहीं था, सत्संग में चला आया। सत्संग में आया, बाहर खड़ा था कि बाबा को बोलना है कि सत्संग में कथा चल रही थी कि गाय माता है, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, गाय खाती हो तो उसको मारना नहीं चाहिए। ये तीन शब्द सुने तब लड़के ने बोला, बाबा बाबा दुकान पे कोई आया। बोला मैं आता हूँ, तुम जल्दी चलो। आ रहा हूँ मैं, बस बोलो मैं आ रहा हूँ। सत्संग समाप्त हुआ, ये लड़का वापस दुकान पे गया। ये दुकान पे लड़का जैसे पहुंचा है, कहीं से गाय कोई आई और बाहर रखी हुई बोरी के अंदर बाजरी खाने लगी। लड़का बोलता है, ए गैया गौ माता बड़ी कृपा की आप हमारे यहाँ आके खा रहे हैं। अब ये अभी सुन के आया था कथा, इतने में कथा समाप्त हुई। काका वहां से आया, ए दो लाठी गाय को दो छोरे को दी, क्या ये अंधा है क्या दुकान पे गाय खा रही है। लड़का कहता, बापू अभी तो कथा में महाराज ने कहा था गाय का। ए बोला एक कथा तो मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, उधर सुनता उधर छोड़ता हूँ, दुकान में थोड़ी कथा को लानी। कथा की बात तो उधर छोड़ के आया, इधर थोड़ी लाया। तो ये एक रुपये वाली मूर्ति है, कथा में तो आते हैं लेकिन इधर से सुन के महाराज के मुख संत महात्मा है ना, ये तो आप सब कीजिए, ये आपका महाराज काम है, हम नहीं है साहब। बहुत अच्छा है, एक बहुत बड़ा कवि हुआ है वो सिंध प्रदेश में, एक उसका शिष्य था, बहुत दूर से आता था कथा में, तो दूर से आता था। एक दिन बोला महाराज आने में बहुत दिक्कत होती है, तो संत था कहा कि देखो किसी गधे घोड़े के ऊपर चढ़ के आ जाया करो उस जमाने में। तो ये बोला महाराज हमारे लिए गधा भी आप है, महाराज हमारे लिए घोड़ा भी आप है, जो आप चाहें वो करो। तो सारा काम आपके ऊपर, हम कुछ नहीं करेंगे, करना ऐसा करना आपको पड़ेगा भाई। साधु संत महात्मा रास्ता बताएगा, सीढ़ी रख के देगा, लेकिन चढ़ना तो हमको पड़ेगा, वो चढ़ेगा तो मरना तो आप मरे सड़क जाए, बाप मरे सड़क कौन जाए, आपको कहें। पुराने जमाने में एक कवि हमारे पास कहा करता था, पिता मरा तेरा और पाठ पे दूसरे किसी ने पढ़ा, फिर तेरा बाप कैसे तरा। तू तो दुकान चला रहा था और महाराज को लाया था, महाराज तुम पाठ करो, तो महाराज ने पाठ पढ़ा, तेरा बाप कैसे तरेगा, तू तो बैठ कम से कम उधर। देखो तुम बिठाओ तो सही कम से कम उसको, कि तुम बैठ के सुनो ना, उसको सुनाने के लिए होता है कहते हैं। तो ये सारा कहने का भाव ये कि सुनने के साथ कुछ तीसरा, जब मूर्ति को उठाया तो उसके कान में डाला, बिजल कान से नहीं निकला, मुंह से बाहर निकल गया। बोला 10 रुपये वाला है, कथा सुनता है, घर में आता है, कथा करता है, बताता है बच्चों को मैं ये कथा सुन के आया हूं, तो दूसरों का भला होता है, लेकिन स्वयं कभी अध्ययन नहीं करता। जो सुना वो सुनी बात करेगा, सुनी बात एक को बताओ, दूसरे को बताओ, तीसरे को, चौथे तक जाते जाते उसका पूरा रूप रेखा बदल जाएगी, कहो कही होगी एक और बदल के हो जाएगी दूसरी। तो 10 रुपये की मूर्ति कम से कम बोलता तो है, जाके सुनता है, सुना है तब किसी को समझा रहा है। बोला 100 रुपये वाला महाराज, तार इधर से डाली, न कान से निकली न मुख से निकली, सीधी दिल में चली गई। बोला ये 100 रुपये वाला सुनने वाला, ये श्रोता वो है जो सुनता है उस चीज को दिल में धारण करके अभ्यास करके अपने जन्म को सफल कर लेता है। सुनते सब है लेकिन वो सुनने वाला जो हृदय से उसका अनुभव करेगा उसको लाभ क्या मिलेगा। तब तीसरी लाइन में कहते हैं, कालेन अति दीर्घेण भगवान विचते हृदय। कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, कालेन अति दीर्घेण बड़ा लंबा समय नहीं लगेगा, तत्काल भगवान विचते हृदय, भगवान आके हृदय में बैठेंगे। भगवान आके हृदय में बैठते हैं अगर कोई श्रद्धा से कथा सुन के समझ के और जीवन में उसको उतारने का प्रयास करता है तो भगवान दिल में आकर बैठते हैं। क्या करेंगे भगवान दिल में आकर बैठ के, कोई कहे तो कि भगवान दिल में बैठ जाएंगे तो हमको तो कोई बुराई काम करने देंगे नहीं, और हमको तो बहुत उल्टे सीधे काम अभी तक करने हैं। एक आदमी को दुकान पे हमने देखा 10-12 अगरबत्ती जलाई और ऐसे मूर्ति के सामने खड़ी की, और दुकान कोई ग्राहक आया था बोला तो 10-10 का 10 तुम्हारे ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, देखो ऐसे 10-10 तुम्हारे कोई ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। मैं कहा तो कर क्या रहा है भाई, ये भैया अगरबत्ती भगवान को क्यों दिखा रहा है? बोला धुआं जाएगा, आंखें बंद करेगा, मैं इसको लूट लूंगा, बाद में उससे बात कर लूंगा। तो भगवान को धुआं दिखा रहा हूं, अरे भगवान को धुआं दिखा रहा हूं, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, भगवान की पूजा करने का उद्देश्य ये नहीं है। तो ये ऐसा ऐसी ऐसी जो जो लक्ष्य है कि भगवान हृदय में आएगा तो ऐसा नहीं करेगा। क्या करेगा भगवान हृदय में आएगा? तो डरो मत, भगवान क्या करेगा हृदय में आएगा? भागवत में ब्रह्मा जी लिखते हैं धुनोति शमलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हृदय में आएगा तो सारा मैल धोएगा, बैठ के अंदर झाड़ू निकालेगा। अब भगवान को अंदर बैठना है, अंदर तो बहुत कचरा कई जन्मों का भरा हुआ है, अब उसको साफ करेगा तब बैठेगा ना। तो ये बहुत बड़ी बात भागवत में लिखी है, कथा में आओगे कानों के द्वारा भगवान को कथा के रूप में हृदय में धारण करोगे तो भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे। भगवान हृदय में आके धुनोति शमलम कृष्ण, भगवान बैठ के सारे मैल धोएंगे और हृदय को उज्जवल कर देंगे। तो भगवान आके हृदय में मैल, कथा कथा सुनने का मतलब है भगवान को लेना, दिल के अंदर भगवान को बिठाना। तो अनुभव तब होगा, विज्ञान तब होगा जब हम हृदय से उस चीज को अपनाएंगे। जब कहते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा है लेंगे, लेकिन जब लेना शुरू करोगे तभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। उसका रिजल्ट चाहिए, उसका परिणाम चाहिए, अनुभव चाहिए, तो करना पड़ेगा। तो आप करोगे तभी उसका लाभ होगा। तो विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये विज्ञान महाराज प्राप्त करने के लिए बोला अश्रद्धाना पुरुषा, अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर तुम्हारे को ये विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। आदौ श्रद्धा, इसलिए पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, ये निश्चय दृढ़ कर लो कि श्रद्धा और विश्वास से ही आप आगे बढ़ सकते हो। आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर श्रद्धा और विश्वास अति आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास के ऊपर सारा काम संसार का चल रहा है। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान से शुरू किया गया है और राज विद्या तक पहुंचते पहुंचते कल भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, कैसे उनकी कमी को पूरा करते हैं, इस श्लोक के ऊपर रात चर्चा की थी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं अपने भक्तों का जो मेरा नित्य चिंतन करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे को प्राप्त करने के लिए जो उपासना करते हैं, उनकी हर कमी को मैं पूरा करता हूं, मुझ तक पहुंचने में जो रास्ते में दूरी है उसको खत्म कर देता हूं, और जो उसने पहले से उपलब्धि की है, जो पहले से उसके पास इकट्ठा हो गया है, उसको मैं गिरने से बचाता हूं, उसको चोरी हो जाने से बचा लेता हूं, उसको मैं उसकी मैं रक्षा करता हूं। ये श्लोक भगवान ने कह दिया, इसके ऊपर कल चर्चा की थी। इसके बाद में श्लोक आता है कि भगवान फिर आपकी सब पूजा क्यों नहीं करते? ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। इसके बाद का श्लोक है, क्या मेरी पूजा जो नहीं करते हैं, ये अपि और किसी की करते, किसकी? अन्य देवता, किसी और देवता की करते हैं। यजन्ते श्रद्धयान्विता, और उसके पूजन बड़ी श्रद्धा से करते हैं। और भगवान कहते हैं वो भी मेरी ही पूजा है, करते दूसरे किसी देवता की पूजा है, अनन्य मेरा चिंतन नहीं करते, करते किसी दूसरे देवी देव का भी पूजा है, लेकिन करते बहुत श्रद्धा से हैं, और श्रद्धा से करते हैं इसलिए वो भी माम एव कौन्तेय, वो भी मुझे मिलता है, मेरी ही करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? यजन्ते अविधि पूर्वकम्, लेकिन विधि से काम नहीं करते, अविधि पूर्वकम्। और 7वें अध्याय में इसको भगवान कहते हैं अल्प मेधसा, जो छोटी बुद्धि वाले हैं वो देवता की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो देवता से मिलता है वो जब तक जीते हैं तब काम आता है। शरीर समाप्त हुआ, देवता का वरदान पूरा हुआ। देव पूजा संसार सुख, भगवत पूजा परलोक की गति सुधरती। तो देव पूजा, देवता पूजा वाला अल्प बुद्धि है। अब अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम भगवान को कैसे मिलता है? भाई हाथ को दबाओगे तो भी तो मेरा ही हाथ दबा रहे हो ना, पांव को दबाओगे तो भी मेरा पांव दबा रहे हो, भाई इंद्र हाथ में निवास करता है। हाँ, जीभा में किसी को भोजन खिलाओगे तो वरुण देव जीभा में निवास करता है विराट पुरुष की। कान में कुछ अच्छा रस की बात सुनाओगे तो अश्विनी कुमार कान में बैठे, आंख को कुछ सुंदर देखने को दे दोगे तो भाव तो सूर्य देव आंख में बैठा हुआ है। तो ये देवता किसी भी पूजा करो, पूजा तो मेरी हो रही है लेकिन अविधि पूर्वक पहचान तो नहीं होगी मेरी कर रहे हैं, तो ये अविधि पूर्वक है। तो आपको कैसे मिलती है, अर्जुन अगर पूछता है तो करते हैं हम पूजा किसी देव की, मिलती है आपको कैसे है भगवान? तो भगवान कहते अहम ही यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च। जितना भी यज्ञ किसी देव का करो, किसी की पूजा करो, लेकिन उस यज्ञ का भोक्ता मैं हूं और फल देने वाला प्रभु, फल देने वाला मैं हूं। देवता किसी की भी पूजा करो, पूजा किसी की भी करो, लेकिन भोक्ता मैं हूं, उसका फल देने वाला मैं हूं, उसको भोक्ता मैं हूं। लेकिन फिर तीसरी लाइन में कहता है क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये अन्य देवता भजता यदंते अविधि पूर्वकम अहम यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च अवजानंती माम, अवजानंती जानते नहीं है तत्वे न, तत्व से वो नहीं जानते कि मैं क्या हूं, चैवंती फिर नीचे गिर जाते हैं। पूजा करते हैं किसी देव की लेकिन मुझे नहीं जानते हैं, पूजा तो मेरे को मिलती है लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं, उनको फल नहीं मिलता क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है भगवान? तब भगवान ने निर्णय बता दिया, यान्ति देवव्रता देवान, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवता का व्रत रख के देवता की पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, चंद्र की पूजा करेगा चंद्र लोक में जाएगा, सूर्य की पूजा करेगा सूर्य लोक में जाएगा, वरुण की पूजा करेगा वरुण लोक में जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, पितर की पूजा करेगा पितृलोक में जाएगा। भूतानि यान्ति भूतेर्या, और भूत प्रेत की पूजा करेगा काला, जो कितने लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं, हाँ जाके भोका ढूंढ सी है भूताना पुजारी तो भूतलोक में जैसी। भूतानि यान्ति भूतेर्या, मद्याजिनोऽपि माम, मद्याजिनोऽपि माम, जो मेरी यजन करेगा मेरी पूजा करेगा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे पास आएगा। तो जिसकी पूजा करेंगे उसके पास जाएंगे। अरे भगवान, जिसकी पूजा देवता की श्रद्धा से करें आपको मिलती है लेकिन वो जाएगा उसके पास, ऐसे कैसे? पूजा करें किसी देवता की, पूजा मिलेगी भगवान आपको लेकिन वो जाएगा उस देवता के पास, ऐसे कैसे? ये तो कैसे, तो ये तो बड़ा अटपटी सी बात हो गई। आप जाएंगे रेलवे स्टेशन के ऊपर, टिकट लेंगे दिल्ली का, पैसा तो सरकार को जाएगा लेकिन आप तो दिल्ली में जाएंगे, सरकार के पास थोड़ी जाएंगे। टिकट लेंगे बंबई का तो बंबई जाएंगे लेकिन पैसा फिर भी सरकार के पास जाएगा, पैसा तो जाएगा सरकार के पास लेकिन आप जाएंगे अहमदाबाद तो अहमदाबाद टिकट लेंगे तो अहमदाबाद जाएंगे, और पटना का टिकट लेंगे तो पटना पहुंच जाएंगे। तो जहां की आप इच्छा करेंगे वहीं आप जाएंगे, पैसा लेकिन एक जगह पे जाएगा। ऐसे पूजा किसी की भी करो जाएगी भगवान के पास, लेकिन फल आपको मिलेगा जिसकी पूजा करेगी वहां जाना पड़ेगा। तो भगवान जो आपकी पूजा करते हैं आपके पास पहुंचते हैं, हाँ जी तो बोला आपकी पूजा तो बहुत मुश्किल होगी। तो भगवान आपकी पूजा करना क्या बहुत मुश्किल है क्या? तब भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्य प्रच्छति। अरे मेरी पूजा इतनी आसान है, इतनी आसान है, पत्रम एक पत्ता, तुलसी का एक पत्ता लेके आ जाओ, चलू मात्र जल, चलू मात्र जल और तुलसी दल से भगवान अपने आप को बेच देता है, भगवान अपने आप को दे देता है। तो भगवान की पूजा क्या करनी है, पत्रम एक पत्र दे दो, एक तुलसी का पत्ता अर्पण, पुष्पम एक फूल उठा के कहीं से दे दो, फलम एक बेर जैसा फल सबरी ने दे दिया भगवान को, तो सबरी का फल खाता है भगवान राम और उससे भगवान राम की सबरी भक्तन होगी। अभी तक हम सबरी के गुण गा रहे हैं, क्या खिलाया था, एक बेर, वो भी जूठा करके चक के भगवान को खिला रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे भाई फल नहीं मिलता है, पानी तो मिलता है ना, चलो भर पानी भगवान को अर्पण कर दो। भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्य प्रच्छति, जो भक्त मुझे प्रेम से अर्पण करता है अश्नामी उसको मैं ग्रहण करता हूं, उसको मैं भोग करता हूं, उसको मैं लेता हूं प्रियतात्मना, क्योंकि वो मुझे प्रेम से देता है, मुझे प्रेम से देता है तो मैं उसको स्वीकार। तो भगवान की पूजा बहुत सरल है, बहुत सरल है। गजेंद्र हाथी ने क्या किया था, वो गजेंद्र हाथी तो धरती के ऊपर रहने वाला और पानी के अंदर मगरमच्छ रह रहा था। अपने स्त्रियों के संग में हाथी बड़ी हथनियों के सामने घूमता हुआ आया, नदी के अंदर नहा रहा था, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। अब जल का मगरमच्छ का बल बढ़ता रहा, थल के हाथी का बल घटता रहा, हाथी हरा गया। तब भगवान को प्रार्थना की गजेंद्र मोक्ष स्तुति में भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर पधारे। गजेंद्र ने उठा के एक फूल भगवान को अर्पण किया, एक फूल अर्पण किया और भगवान ने उसका उद्धार किया। तो एक पुष्प के अर्पण से गजेंद्र हाथी का उद्धार हुआ, एक फल के अर्पण करने से सबरी का उद्धार हुआ। पानी का जल रंती देव ने दिया था और वो भी गधे को पिलाया था, ले जा रहा था गंगोत्री से जल और जा रहा था रामेश्वर में चढ़ाने, रस्ते में प्यासे गधे को देख के जल पिला दिया कि ये मर रहा है। तब भगवान प्रकट हो गए, कहे तुम्हारे जल से मैं संतुष्ट हुआ। तो इतनी छोटी सी चीज से भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। कोई भी आदमी भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को पा सकता है, बहुत सरल भगवान का। और इसके बाद भगवान ने सिद्धांत बता दिया, यद करोसी यद स्नासी यद जहोसी ददासी यत, जो करते हो यद करोसी जो करते हो, यद करोसी यद स्नासी जो खाते हो, यद करोसी यद यद ददासी जो देते हो, यद जहोसी जो लेते हो, यद तपस्यसी तपस्या करे हो, जो यज्ञ करते हो तपस्या करते हो दान करते हो करते रहो। करशो मद अर्पणम, सिर्फ श्री कृष्ण अर्पण कहो, भगवान आपको अर्पण किया, कुछ भी करो करते रहो, खाते हो खाते रहो लेकिन मुझे अर्पण करके खाते रहो। ये कर्म का सिद्धांत भगवान ने बताया कि अगर जो कुछ करना है करो लेकिन भगवान को भूलो मत, भगवान को याद करते करते रहोगे, भगवान आपका है, आपकी स्मृति में कर रहे। तब अर्जुन ने ऐसे कहा कि क्या अशुभ खाएंगे तो क्या होगा। तब इसके बाद का श्लोक बहुत शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंध नहीं, अरे शुभ हो या अशुभ हो, भगवान कहते शुभ हो अशुभ का मुझे चिंता नहीं है, आप शुभ मुझे अर्पण करते हो लेकिन मैं अशुभ आपके पास थोड़ी रहने दूंगा। शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंध नहीं, शुभ हो या अशुभ हो कर्म के फल सारे से मुक्त कर दूंगा मैं, क्योंकि तुम मेरे लिए कर रहे हो संन्यास युक्त न, तो क्योंकि तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो अब शुभ हो रहा शुभ हो उसका तुम चिंता मत करो, मैं सबसे तुमको मुक्त कर दूं। ऐसे कहने के बाद भगवान दूसरा प्रसंग के समूह हम सर्वभूतेषु, ये नवे अध्याय का श्लोक आएगा, इसके बाद तीन चार श्लोकों का वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। कहाँ गया हमारा दाऊ जी, आयास हो गया है, क्या प्रश्न आपका, क्या टाइम क्या हो गया, 3 मिनट है 10 में, आपका क्या प्रश्न है भाई, तीसरा नंबर प्रश्न क्या बच गया, पहले दिन पूछा था कर्म की परिभाषा क्या है, दूसरे दिन पूछा था कृष्ण भावना भावित कैसे होना है, कर्म की परिभाषा जो कर्म करेंगे तो एक और शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन कर्म योग करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। कर्म योग मतलब भगवान के लिए कर्म करना। और दूसरे दिन कृष्ण भावना भावित होना कैसे है, दो ही तरीके है, भगवान का नाम लो, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान की कथा सुनो, तीन काम करने से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं तो आप कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, लेकिन कल के बाद फिर भी ये कार्य चालू रखोगे तो ये कृष्ण भावना भावित होना चालू रहेगा। क्या तीसरा प्रश्न है, इसको भेज दिया आपने, हर समय चिंतन की प्रक्रिया, तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनुसमर युद्ध च, ये 8वें अध्याय का महावाक्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु, तस्मात इसलिए कहते हैं इससे पहले भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्वम भावम त्यजते अन्ते कलेवरम, जो अंत समय जब शरीर छोड़ता है उस वक्त मेरा चिंतन करता है वो मेरे पास आता है। अंत मति सो गति, ये श्लोक का अर्थ है। ये श्लोक कहने के बाद भगवान कहते हैं तस्माद, इसलिए, क्योंकि अंत समय जो चिंतन होगा वही तुम्हारी गति होगी, इसलिए तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुसमर युद्धच, इसलिए हर समय मेरा अनुसमरण का है, समरण नहीं का है, अनु जब शब्द आता है उसका अर्थ होता है जहल, जैसे पहले ऋषि महात्माओं ने किया है वैसे करो, अपना मन का नया मत मत पैदा करो। ये बहुत बड़ा अनुसमरण शब्द महत्वपूर्ण है, समरण भी भगवान कह सकते थे लेकिन अनुसमरण का है। अनुसमरण कहने का मतलब है जो परंपराएं जो सिद्धांत चलता है उनके अनुगत करना है, उसके जैसे वो कर रहे हैं वैसे करना है। ऐसे नहीं मैं अपना नया पंथ चालू कर दूं, ऐसे नहीं ऐसे करना है जैसे मैं करूं। अनुसमरण, मेरा अनुसमरण सदा के लिए करते, ये महावाक्य है गीता का। तस्मात सर्वेषु का दो बार आठवें अध्याय में आया है। पहली जगह कहते तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुसमरण युद्ध च, इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, मतलब अपना कर्तव्य कर्म करते रहो लेकिन मेरे को याद करते करते। लेकिन आखिरी श्लोक में कहते तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुसमरण योग युक्तो भव अर्जुन, वहां दूसरा शब्द आखिरी लाइन बदलते हैं, इसलिए हर समय मेरा अनुसमरण करते योग युक्तो भव अर्जुन, योग के द्वारा तुम मुझसे जुड़े रहो। तो मुझसे जुड़े रहकर हर समय मेरा स्मरण करो, तो जो भी काम करते हो वो भगवान का समझ के करना, ये भक्त की परिभाषा है। रोटी पका रहा हूं तो भगवान को भोग लगाने के लिए पका रहा हूं, कब झाड़ू निकालना हो तो भगवान के लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। तो जो काम करो भगवान की वृत्ति मन में बनी रहे उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास सुबह सवेले प्रातः उठ के भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। जो सुबह उठ के भगवान का स्मरण कर लेता है उसका सुबह अच्छी हो गई तो सारा दिन अच्छा रहेगा, उसकी स्मृति बनी रहेगी। जब 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 थोड़ा समय मिले तो बैठ के, एक महात्मा बहुत अच्छी बात कहते थे कि सुबह जब उठो ना बिस्तर से उठ के आंख खोलने से पहले कोई एक तुक, कोई एक लाइन किसी शास्त्र की किसी संत की उच्चारण करो मन में, मानो सुबह उठते ही हमारे मन में आ जाए कि भगवद गीता में आज हमने सुना अनुसूय शब्द, तो किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, तो इसको विचार दो मिनट करके फिर उठो। उठने के बाद अपना स्नान पान करके तैयार हो जाओ, फिर अनुसूय आज किसी में दोष नहीं देखना है, तब बाहर जाओ तो किसी के अंदर दोष देखे तो आज हाँ मैं कहा था आज अनुसूय दोष नहीं देखना चाहिए। फिर दो घंटे एक घंटे के बाद जब काम से निवृत्त हो एक मिनट के लिए पीछे वापस जाके उसी चीज का थोड़ा ध्यान करो। तो ऐसे करते अभ्यास करते कर रोज कोई ना कोई एक श्लोक आधा सुबह उठ के मन में रख के पूरा दिन उसका चिंतन करते रहोगे तो भगवान का चिंतन बना रहेगा। हर चीज जैसे जैसे छोटी छोटा चप्पल घर में देखते हो तो अपना बच्चा याद आता है ये चप्पल किसका है, भगवान का है, ये मेरे बेटे का चप्पल है। तो कोई छोटा कपड़ा पड़ा ये ओ ये बनियान मेरे बच्चे की है, तो कपड़ा देख के बच्चा याद आता है, जूता देख के बच्चा याद आता है, किसी की कोई चीज, ऐसे संसार के अंदर कोई चीज है नहीं जो भगवान की नहीं है। यो माम पश्यंती सर्वत्र सर्वम च मई पश्यती, जो सब जगह मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए तो मैं सुलभ हूं, सब जगह उसको मैं मिलता हूं। तो ये चिंतन करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तस्मात सर्वेशु कामाल कालेशु, ये इसके लिए उत्तर भगवान का है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।